धौला पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 17। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् त्रिभुवन शिरसे हरे भवभयगभ्रादुनिगदेपणम् सिद्धे जीवठाण समलिन गुण चूलियम उच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसमें अपना विषय है चूली काका, और ये छठवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 164 पर आ गए, 164। देखो हम क्या देख रहे थे, यहाँ कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को देख रहे थे। उत्कृष्ट स्थिति होती है वहाँ उत्कृष्ट आबाधा भी होती है, इसलिए हर कर्म की उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट आबाधा बताई। ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय और असाता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर, और उसकी उत्कृष्ट आबाधा 3000 वर्ष देखी थी। उसके बाद हमने 15 कोड़ा कोड़ी वाले देखे थे, बीच में किसको देखा था, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, वो तो बता चुके। उसके बाद 15 कोड़ा कोड़ी सागर की बताई थी, पुरुष वेद है, साता वेदनीय, पुरुष वेद नहीं, स्त्री वेद, साता वेदनीय, स्त्री वेद, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, इनके 15 कोड़ा कोड़ी सागर है। उसके बाद हमने देखा था मिथ्यात्व की तो बात हमने बता चुके, पुरुष वेद की बात तो बाद में की, पहले उन्होंने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि 16 कषाय की बात की थी, यानी चारित्र मुनि में जो कषाय कर्म है, 9 कषाय को छोड़ दो, कषाय कर्म 16, उसकी उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। समझ में आती बात, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उसके कम 40 कोड़ा कोड़ी किसकी है, चारित्र मुनि में कर्मों यानी कषाय कर्मों की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्म के नाम भी हैं। उनकी उत्कृष्ट स्थिति कोई बांधता है तो कितनी बांधता है, तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर। 30 वाले हमने देख लिए, फिर 15 वाले भी बता चुके थे, 20 वाले बताए ना उन्होंने पहले, नहीं वो 15 वाले बताए, साता वेद, स्त्री वेद वगैरह 15 वाले देखे। अब उसके बाद पेज नंबर 163 पर पुरुष वेद आदि की बात उन्होंने बताई थी, उसमें पुरुष वेद लिया, हास्य रति लिया, देव गति, गति गत्यानुपूरी साथ में हम कहेंगे, समचतुरस संस्थान, वज्रषभ, नारा सहन, इन्हें पहला संस्थान पहला सहन है, प्रशस्त व्याय गति, और बाकी सब ये शुभ प्रकृति, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यशस, कीर्ति, उनका 10 कोड़ा कोड़ी सागर बंद होता है, और उसकी आबाधा 1000 यानी 1000 वर्ष की है। अभी आगे पढ़ने के पहले इतना पुस्तक वेद आदि हमने पढ़ा था, फिर भी कल अपनी चर्चा चली थी ना, तो हम जरा सन्निकर्ष देख लेते हैं कि जहाँ पुरुष वेद का उत्कृष्ट बंध हो रहा है, वहाँ कौन सी प्रकृतियाँ कितनी बनती है। तीसरी पुस्तक है महाबंध की, हाँ वहाँ 62 नंबर का पृष्ठ है, उसको कहते बंध सन्निकर्ष। सन्निकर्ष ने एक प्रकृति बंध रही है तो उसके साथ कौन सी बनती है, और एक उत्कृष्ट बनती है तो दूसरा क्या उत्कृष्ट बनती है, क्या अनुत्कृष्ट बनती है, ये यहाँ हम पढ़ेंगे 62 पेज पर। देखो यहाँ लिखा है पुरुष वेद की उत्कृष्ट स्थिति का बंध करने वाला जीव, यानी पुरुष वेद कितना बांध रहा है, वो 10 कोड़ा कोड़ी का, और नाम कर्म की सामने पुरुष वेद ने कषाय कर्मों में, 9 कषाय कर्मों में उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी हो सकता है, और यहाँ इसको 10 हो रहा है, तो उसमें वो बाकी भी थोड़े उसमें कम बन देंगे। यहाँ कहते हैं पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, उसके साथ कौन कौन सी बन रही है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण हर जगह बन रही है। पुरुष वेद का बंध कहाँ तक है, तो ऊपर तक। उत्कृष्ट बंध कब होगा, तो मिथ्या दृष्टि क्यों होगा। उत्कृष्ट सिद्धि बंध कब होगा, संकलेश परिणाम ज्यादा हो गए तब। समय दर्शन होने के बाद अंत कोड़ा कोड़ी हो जाता है। अब यहाँ उत्कृष्ट बंध हो रहा है ना, उत्कृष्ट सिद्धि का बंध की बात चल रही है पर, तो कौन करेगा मिथ्या दृष्टि उत्कृष्ट संकलेश वाला। तो उसके अन्य भी उत्कृष्ट बन सकते हैं, उसके मिथ्यात्व का वगैरह उत्कृष्ट नहीं अनुत्कृष्ट बंधेगा, कितना बंधेगा वो बता रहे। तो ज्ञानावरण तो नियम से बंधेगी बंधेगी, पहले ये प्रकृतियां बताएंगे कि जो नियम से बंधेगी। तो मिथ्या दृष्टि तो पांच ज्ञानावरण बंधेगे, नौ दर्शनावरण बंधेगे, मिथ्या तो सोलह बंधेगे, वो तो द्रोहबंदी है, भयजुगुप्सा बंधेगी। अब पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, क्यों, क्योंकि पुरुष वेद का उदय एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीनद्रिय चतुरिंद्रियों में नहीं होता। तो जब पुरुष वेद बांध रहा है, नेचुरली पंचेंद्रिय जाति बांध रही है, यानी उस समय अभी पुरुष वेद का बंधने वो नरक गति तो नहीं बंध रहा है, क्योंकि ये तो देखा हमने दस कड़ा कोड़ी वाला ही बंध है। तेजस शरीर, कारमान शरीर, वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, त्रस चतुष्क, निर्माण, ये क्यों लिए सब चतुष्क, क्योंकि अपर्याप्त के साथ पुरुष वेद नहीं बन रहा है, पर्याप्त जीवों के बंधेगा, पंचेंद्रिय पर्याप्तों के, क्योंकि लब्धि अपर्याप्तों के नपुंसक वेद होता है। इस तरह से थोड़ा सोचना, अभी हम बीच में ही इसको निकाल कर पढ़ रहे, पर जब हम कंटिन्यूस पढ़ते तो ये बात आसान हुई थी तभी। निर्माण और पांच अंतराय का इनका नियम से बंध होता है, जो नियम से अनुत्कृष्ट, क्योंकि इनका उत्कृष्ट बंध कब होगा, अति संकलेश परिणामों में उत्कृष्ट होगा, ज्ञानावरण का, मिथ्यात्व का, आदि सभी प्रकृतियों का जो हमने अभी गिने। तो कहते अनुत्कृष्ट होता दो भाग न्यून स्थिति का बंधक होता है, दो भाग न्यून यानी दो गुण हानि जैसे कि, यानी आधा होता है। क्यों आधा, देखो क्योंकि हमने कषाय यानी नौ कषायों का उत्कृष्ट बंध 20 है, 20 कुड़ा कोड़ी, और इसका बंध रहे आधा 10 कुड़ा कोड़ी, उनका भी अपने जो उत्कृष्ट स्थिति से उसका आधा बंधेगा, ये कहना चाहते हैं। अभी उसके साथ अन्य भी जो बनती है देवगति वगैरह जो बंधेगी वो, यानी उसकी भी जो हमने अभी जो देखा ना पुरुष वेद के साथ जो अन्य प्रकृतियां 10 कुड़ा कोड़ी वाली बंधने वाली है वो कैसे बनती है, उसकी साथ यहाँ बात की। तो उत्कृष्ट भी बन सकती है, अनुत्कृष्ट भी बन सकती है, अब उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे आगे। अभी असाता आरती वगैरह भी बन सकती है, पर पुरुष वेद के साथ वो भी, असाता का उत्कृष्ट बंध कितना है 30, उसको भी उसका भी आधा होगा। यहाँ नौ कषाय का आधा हो रहा है ना, तो उनका भी अपना अपना आधा होगा, यानी असाता वेदनी 15 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी, और शेष जो अरति शोक वगैरह 20 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट वाली वो भी आधी यानी 10 कोड़ा कोड़ी की बंधेगी। इस तरह से उसका अन्य भी जो जो अति प्रशस्त प्रकृतियां जहां मैक्सिमम जिसका जो बंध होता है उसका अपना अपने से आधा हो जाएगा। ये अच्छा कि आपने पूछा प्रश्न, तो अपने भी बात अभी उसका स्वामित्व निकालो, आप एक एक प्रश्न नया नया निकालते हो। क्या आपके फिर प्रश्न पूछो, उत्कृष्ट स्थिति का अभी लोएशिया में ले लो, नारकियों को ले लो ना, शुभ लेशा शुक्ल लेशा में तो अंत कोड़ा कोड़ी का ही बंध होता है उनके। देखो अभी आप निकालो, आपके पास पुस्तक है ना, उत्कृष्ट सिद्धि बंध का स्वामित्व निकालो, दो भाग में हम निकालेंगे। सोनी बहन जरा राइट साइड का कपाट खोलना, आपने निकाली उसमें से उत्कृष्ट सिद्धि बंध, हाँ, ये जो दो लिखा है राइट, वो लाल पुस्तक है ना, दो संख्या लिखी है, वो एक है और उधर भी एक है, वो ग्रीन पुस्तक के राइट साइड में, वो प्रवचन प्रवचन है ना इधर, ये बाजू, हाँ वो उसके उधर दो नंबर के, हाँ वो भी देना। एक सुनो, एक मिनट, देखो अर्थपद परस्थाई सन्निकर्ष है सारे, एक मिनट, 109 परस्थान है वो, आप उसमें माइक में बोलो।
हेलो, पीतलेशा में देवगति की उत्कृष्टि का बंधक जीव,
पीतलेशा वाला जीव देवगति का बंद कर रहा है, मनुष्य तीर्यंच कर रहा है। हाँ, अब पुरुष वेद स्त्री वेद का ऑप्शनल है, अनुत्कृष्ट संख्यात गुणहीन बताया,
वो तो मनुष्य और तीर्यंच की अपेक्षा।
अभी जो अभी देव में आप देव देवगति वाली बात निकालो, बांधने वाले आप देवगति को बांधने वाले को कहते हैं या मनुष्य गति को बांधने वाले को कहते हैं, अब उसमें भी आपको लेशा लगानी है।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि छह लेशा में उत्कृष्ट संबंध हो सकता है कि नहीं।
देखो देखो, ये उसके लिए आपको स्वामित्व निकालना है, पुस्तक दो में देख लेते हैं, वो आपका रिकॉर्डिंग नहीं होगा तो सामने वाले, आपका प्रश्न है उत्कृष्ट स्थितिबंध की बात है ना, अभी तो हमें उत्तर प्रकृतियों में देखना है उत्कृष्ट स्थितिबंध, उत्तर प्रकृति स्थितिबंध, हाँ निषेक अनुयोग अध्याय छेद न सर्व स्वामित्व, उत्कृष्ट स्वामित्व 255 से 285 आपको दिया ना दो नंबर के पुस्तक, वहां हमें एक मिल जाएगा 255 टू 285, उसमें फिर हम मार्गणा में देखेंगे, लेशा में 285 तक है ना, मैंने पीछे से देखना चालू करेंगे 285 से, उनको सभी मुझे किसको ज्यादा होता है, कौन से लेशा वाले को नेचुरली, हाँ उनमें उत्कृष्ट स्थिति का, तो उनके योग्य उत्कृष्ट स्थिति होगी ना,
वही मेरा क्वेश्चन था कि वहाँ पे 10 कोड़ा कोड़ी नहीं बचेगी ना,
उनके अंत कोड़ा कोड़ी होगी, उनका कितना बंद होता है अगर देखना है, इसमें रेशाओं में उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन करता है वो बात होगी, एक बात और पुरुष वेद का उत्कृष्ट स्थिति बंध कौन सी लेशा वाला, वो उसमें लेशा नहीं कहेंगे, कौन सा जीव करता है, फिर भी देख लो आप, उसमें तत्प्रायोग संकलेश वाला ले लेंगे हम,
वहाँ पे यहाँ पे बुक में क्लियर नहीं किया है कहाँ पे भी, इसीलिए खाली मैंने,
आपने दूसरी पुस्तक देखी थी,
हाँ कल मैंने थोड़ा देखा था तो मेरे को वहाँ पे क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया थी।
देखो देवगति में पूछा गया है, तत्प्रायोग मिथ्या दृष्टि देव इतना ही लिया है, साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश परिणाम वाला, यानी उसमें ऐसा कोई लेशा वाला भेद नहीं किया कि नीचे वाले ही देव बांधते वगैरह, शुक्ल वाला तो अंत कोड़ा कोड़ी का ही बंद होता है उसके, यानी उनमें अपने अपने में उसकी कंपैरिजन की है,
क्योंकि हमने देखा था कि देव जो
अभी आप फिर कल देख के आना, ये डिटेल में पढ़ना दूसरी पुस्तक, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि अभी पढ़ने से क्या है, सबका इसका वो ये याद नहीं आएगा तो कंफ्यूजन और बढ़ेगा, क्या चल रही बात। अभी हम यहाँ अपने पेज पर आते हैं। हमने महाबंध में से एक बात देखी थी कि जहाँ अभी हमने क्या देखा, पुरुष वेद का उत्कृष्ट सितिबंध कितना है देखा, कितना है 20 नहीं 10 कोड़ा कोड़ी सागर। देखो नौ कषाय ने कौन से हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा वगैरह वगैरह, तो हास्य रति का उत्कृष्ट सितिबंध अभी नहीं 10, अरति शोक का 20, वो अधिक अशुभ है ना, अशुभतर है इस तरह। पुरुष वेद का 10 कोड़ा कोड़ी, स्त्री वेद का 15 कोड़ा कोड़ी, नपुसक वेद का 20 कोड़ा कोड़ी, 20 देखो नौ कषाय में 20, नौ कषाय में 20 नाम कर्म नहीं, वो नपुसक वेद नाम यानी नाम कर्म में भी 20 होता है, परंतु यहाँ ये कहे नौ कषायों में 20 और कषायों में 40। अब इनका ये प्रश्न था इसके साथ अन्यों कैसी प्रकृति बंधेगी, अभी पुरुष वेद का उत्कृष्ट कर रहा है यानी नौ कषायों का उत्कृष्ट कितना हो सकता है, तो 20 उसका आधा हो रहा है, तो नेचुरली जो मिथ्या तो अगर यहाँ बनता है वो भी उसका आधा यानी 70 के बदले 35 कोड़ा कोड़ी सागर का बन जाएगा। हाँ ये महाबंध में अभी निकाल के देखा, हाँ उसका आधा होता है। ज्ञानावरण का उसका अपना 30 के बदले वहां 15 कोड़ा कोड़ी बंधेगा। असातावादी वेदिनी उत्कृष्ट 30 है, अगर वो पुरुष वेद के साथ असाता बन रहा है, अरति शोक बन रहा है, तो 20 के बदले 10 बन देगा उसका, ये कहना वो उसको सन्निकर्ष कहते हैं। यानी ये बस इतना अपने लिए यह काफी है, अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपके जो प्रश्न है महाबंध में फिर आप देख लेना, दूसरे भाग में देखना तो आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि ये विषय छोड़कर अभी सबके हाथ में पुस्तकें भी नहीं है और वो चालू विषय नहीं है। तीसरे भाग में बंध पर सन्निकर्ष में मिला था ये। हाँ अभी हम यहाँ पढ़े अपना विषय चलेगा अभी। कल हमने ये 163 से वो लिस्ट पढ़ी थी, नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा नरगति तिरंजगति एकेंद्रीय जाति पंचेंद्रीय जाति औदारिक शरीर वैक्रिक शरीर तेजस शरीर कारमान शरीर कुंड संस्थान औदारिक, ये सब जो पूरी लिस्ट देखी थी ना हमने, तो उसका 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बताया। 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम ये जो बताया है, तो यहाँ ये नाम कर्म की प्रकृतियां हैं बहुत सारी, नपुसक वेद अरति शोक भय जुगुप्सा ये मोहिनी ने नौ कषाय वाली है, उसका भी उत्कृष्ट 20 कोड़ा कोड़ी सागर हो सकता है। और बाकी जो है नरगति तिरंज गति, ये दो अशुभ प्रकृतियां हैं, देवगति मनुष्य गति शुभ प्रकृति, उसकी तो बताई थी, देवगति के 10 और मनुष्य गति के 15 पहले बता चुके थे, तो इन दो गतियों के अधिक से अधिक स्थितिबंध किसी का होगा तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होगा। एकेंद्रीय जाति पंचेंद्रीय जाति वो भी लेना, अभी एकेंद्रीय जाति तो तिरंज गति के साथ बंधेगी, अति संकलेश किसके होगा तो देवों में वो बंधेगी। अब वो स्वामित्व उसके डिटेल वो हम भूल जाते हैं, केवल यहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाली प्रकृतियां कौन सी है उसकी बात यहाँ बताएंगे। औदारिक शरीर की उत्कृष्ट कब होगी, जो तिरंज गति एकेंद्रीय जाति के साथ औदारिक बांध रहा होगा तो उसको ले लेना है। या नार की तिरंज गति और पंचेंद्रीय जाति बांध रहा है तो भी उसको अति संकलेश होगा, तो भी औदारिक शरीर का उत्कृष्ट बंद करेगा वो, और औदारिक अंगोपांग भी उसके बंधेंगे, क्योंकि अंगोपांग को भी लिया है ना, देव बांधेगा तो केवल शरीर बांधेगा, अंगोपांग नहीं बांधेगा। इस तरह से हम सोच सकते कि कैसे उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब वैकृत शरीर का उत्कृष्ट स्थिति बंध कब होगा, नर गति के साथ होगा। देवगति के साथ कितना होगा, देवगति का 10 कोड़ा कोड़ी होता है, तो देवगति के साथ जब वैकृत शरीर बंधेगा तब उसका भी 10 कोड़ा कोड़ी होगा। इस तरह से हमको सोचना है, परिणाम उसके कितने संकलेश विशुद्ध है उसके अनुसार उसका स्थिति बंध होता है। ये आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगी बातें, क्योंकि आपका वो बाकी अभ्यास नहीं हुआ है, इतना ही सुन लो यहाँ पर। आगे भी दिखा ना, असंप्राप्त सुरपाटी का सहनन लिया, वर्ण गंध रस स्पर्श वगैरह, यानी वो किसके साथ बनते हैं उसका विचार करके हम आतप उद्योत, वैसे तो ये शुभ प्रकृतियां परंतु वो भी एक इंद्रिय के साथ वगैरह बंधेगी तो उसका भी इतना बंध होगा, या उद्योत का बंध हो तो नारकी भी करेगा तीन इंच गति के साथ, ये हो सकता है। अशुभ वर्ण ये दोनों बनते ना, देखो विशुद्धि में उसकी स्थिति कम बन देगी। हाँ अभी किसके साथ बन रहे हैं, उसके देवगति के साथ अगर बन रहा है तो वो तो 10 वाली स्थिति बन देगी। हाँ इसके ये मैक्सिमम है। हाँ या नारकी तीरंज गति के साथ भी 20 बांध सकता है, पर वो उत्कृष्ट संकलेश परिणाम है, क्योंकि नारकी है इसलिए इतना ही बांधेगा ऐसा नहीं, नारकी के भी विशुद्धि होते है ना, तो वो इतना इतनी स्थिति नहीं बांधेगा, ये ख्याल में रखना। जो उत्कृष्ट स्थिति कब बनती है, जब तीव्र कषाय है, जिसको संकलेश कहते हैं, और वो भी मिथ्या दृष्टि के हो गए। स्थिति के बारे में तो आसान है, अनुभाग में तो थोड़ा सोचना पड़ता है, क्या वे प्रशस्त प्रकृति है कि अप्रशस्त है। जहाँ विशुद्धि ज्यादा है वह अनुभाग प्रशस्त का ज्यादा होगा, जहाँ संकलेश ज्यादा है वह अनुभाग अप्रशस्त में ज्यादा होगा, वहां तो थोड़ा सोच सोच कर चलना पड़ता है। स्थिति में क्या है, जहाँ तीव्र परिणाम स्थिति लंबी, इसके लिए तीन एक्सेप्शन है, तीन आयु, देवायु मनुष्यायु और तिर्यंचायु। जहाँ संकलेश ज्यादा है वहां ये तीन आयु शुभ प्रकृति वो कम बन देगी, और तीव्र संकलेश में नरकायु है वो बहुत लंबी बन देगी, नीचे के नरकों का बंध होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, ये सभी प्रकृतियों की 20 कोड़ाकोड़ी सागरूपम, यहाँ हमने कल सूत्र 19 पढ़ा था, उसका अर्थ भी पढ़ा था। अभी 164 पृष्ठ पर अभी नीचे का पैराग्राफ वहां पढ़ते हम सूत्र के नीचे, क्योंकि प्रकृति विशेष होने से, प्रकृति विशेष यानी विशिष्ट प्रकृतियों का विशिष्ट ही स्थिति बंध उत्कृष्ट होता है, ये प्रकृति विशेष होने से इन सूत्रोक्त प्रकृतियों का यह स्थिति बंध होता है। सभी कार्य एकांत से बाह्य अर्थ की अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते हैं। क्या कहा हमने, क्या कहते हैं, सभी जो कार्य होते हैं वो बस निमित्त के अनुसार होता है, एकांत से, एकांत यानी मात्र बाह्य अर्थ की अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते। अन्यथा शाली धान्य के बीज से, शाली धान्य ने अभी जो चावल है या अन्य शाली उसी को कहते हैं शाली वाले, वो बीज से नहीं, बीज से, आप क्या कह रहे, तांदू, चावल, यानी चावल होता है ना, वो तो ऊपर छिलके के साथ उसको शाली कहते हैं, वो बोने से वो चावल आता है, इसके तो उसका धान उगता है, तो वो उसके बीज बोने से जव के अंकुर की भी उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होगा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, तो चावल के लिए क्या लगता है, तो बहुत बारिश बहुत पानी की जरूरत है, तो बहुत पानी है ना, तो हमने जव के बीज बोए, गेहूं बोया और बहुत पानी डाला, तो चावल होगा कि नहीं होगा, ये कहते बाह्य कारण से कार्य नहीं होता है, एकांत से बाह्य कारण से कार्य नहीं होता है। हाँ जब कार्य होता है तो उपादान निमित्त दोनों है, और कार्य तो उपादान से ही होता है, निमित्त की उपस्थिति है, निमित्त भी होता है वहां पर, कार्य में वो कुछ लटपट नहीं करता है, यही कह रहे हैं। कार्य एकांत से बाह्य अर्थ की अपेक्षा करके ही नहीं उत्पन्न होते, अन्यथा अगर ऐसा होता तो क्या प्रसंग आ जाता, कि शाली धान्य के बीज से जव के अंकुर की भी उत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त होता, यानी चावल के बीज बोने से गेहूं की उत्पत्ति हो जाती, किंतु उस प्रकार के द्रव्य तीनों ही कालों में किसी भी क्षेत्र में नहीं है कि जिनके बल से शाली धान्य के बीज से जव के अंकुर की उत्पत्ति करने की शक्ति हो सके, अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति हो सके, यानी ऐसा तीनों काल में कोई बाह्य निमित्त नहीं है कि जिसके कारण वो तो शाली का वो बीज बोझ दे दो और फिर जो उत्पन्न हो जाए। पेज 164। बाह्य जो बताए ना, बाह्य अर्थ है ना निमित्त, बाह्य अर्थ की अपेक्षा करके ही उत्पन्न नहीं होते। क्या है ये, तब तो याद आता है, बाद में कहाँ पढ़ा था ये याद नहीं आता। अंतरंग बहिरंग निमित्त के दो प्रकार नहीं, दोनों ही निमित्त, निमित्त अंतरंग हो या बहिरंग। अंतरंग निमित्त किसको कहते हैं, वो उपादान हुआ, नियम रूप निमित्त को अंतरंग निमित्त कहते हैं, और वेरिएबल निमित्त को बहिरंग निमित्त कहते हैं। जैसे जीव और पुद्गल गमन करते हैं, क्यों, क्रियावधि शक्ति उनका उपादान है, अंतरंग निमित्त अरे वो तो उपादान हुआ। अंतरंग यानी जीव के अंदर होना चाहिए ऐसा नहीं, उसका अर्थ निमित्त धर्मास्तिका है, वो नियम रूप है। और फिर जीव और पुद्गल को एक दूसरे को ना, हमने गाड़ी के निमित्त से हम आए, हमारे निमित्त से हुआ है, हमने पैसा दिया, वो दो अन्य 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 निमित्त कह दो उसको। ख्याल में आई बात, यह तो उदाहरण है ना, शाली धान्य के बोने से, धान्य के बीज से हाँ जौ की उत्पत्ति होती, अभी आगे भी लिखा है, वो तो वहां से पढ़ लेते हैं। निमित्त से कार्य नहीं होता है, कार्य तो उपादान से ही होता है, जिसमें जो योग्यता है, जिससे उपादान शक्ति है, उसी से कार्य होता है। हाँ बाह्य में कहेंगे वो तो क्यों नहीं, उसमें चावल हुए, हमने तो डब्बे में रख दिए। हाँ परंतु उसमें उस समय उस रूप होने की योग्यता नहीं थी, यही उसका मुख्य कारण है। ये नहीं कि हमने उसको बोया फिर पानी डाला इसलिए हुआ, ऐसा भी नहीं है। तो उसी में से क्यों हुए, दूसरे चावल में से क्यों नहीं हुए, तो उन्हीं की योग्यता हो थी वैसा उस रूप परिणमने की, ये मुख्य कारण है। नियामक भी निमित्त नहीं है, नियामक है नहीं, उसको कंट्रोलर कौन है, नहीं उसमें शक्ति तो है परंतु तो निमित्त नहीं आया ना, नहीं हुआ ऐसा नहीं उसका। जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमने की योग्यता जिस द्रव्य में होती है, वो अपने उपादान से ही उस रूप परिणमित होता है, उस समय उसके जो निमित्त सहज रूप से हो जाते हैं, होता तो कार्य उपादान से ही होता है। हमें लगता है निमित्त नहीं मिला, नहीं इसलिए नहीं हुआ, हम आज तक ये नहीं समझे क्योंकि हमको निमित्त नहीं मिला, ऐसी बात नहीं, तब हमारा वो योग्यता नहीं थी। आज योग्यता हुई तो हम अपनी योग्यता से समझे, तब सामने निमित्त मिल गया। ख्याल में आती है बात, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है निमित्त उपादान का, इसको नहीं मानते तो बहुत गड़बड़ी चलती। जिसको हम नहीं कहेंगे तो बहिरंग कारण, हमें अनेक अनेक कारण उसमें निमित्त होते हैं। हाँ जैसे हाँ जैसे हम बहुत बार उदाहरण देते ना, हम दुबई जा रहे थे, प्लेन का टिकट निकलना था, वो सब निश्चित था, हम कितने बजे निकलेंगे वहाँ पहुँचेंगे। तो क्या हुआ बीच में, उस समय बहुत फॉग था, फरवरी में हम गए थे, तो दिल्ली वाले बहुत सारे उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई थी, इसलिए पूरा घेराव डाला वहाँ एयरपोर्ट पर, तो बहुत धूम मची उनकी। तो हमारे प्लेन जो डायरेक्ट जाने वाली थी, तो हमको दिल्ली ले गई, उनको बिठाया, उनसे दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में उनको उतरा, फिर हमको फिर नीचे उतर कर सब पूरा उनके जो कुछ चेकिंग वगैरह होती, फिर चढ़ाया और फिर दुबई ले जाए, यानी 2 घंटे के बदले हम 4-5 घंटे में पहुँच गए। तो हमें जाना था ना, हमारी इच्छा भी थी और हमारी वो, तो ऐसा क्यों गए, तो अपने उपादान से हम गए, बाह्य निमित्त क्या बना, दिल्ली तो जाने का प्रोग्राम नहीं था, तो वहां क्यों गए। तो इस तरह से जो कुछ निमित्त जो बाह्य, इसको कहेंगे वेरिएबल निमित्त, पर वहां पर भी गए अपने उपादान से गए हैं, वहां नियम रूप निमित्त धर्मास्तिका तो था ही था, परंतु इस तरह से जाने का क्या और क्या बहिरंग निमित्त क्या बना, तो हम कहेंगे इस तरह से बना। परंतु तब भी हम तब हम वो कौन सा पुस्तक पढ़ रहे थे, वो प्रवचन सार वाला दिव्य ध्वनि सार, हम तो साथ में ले गए। तो हमने बोले चलो हम अपने उपादान से जा रहे हैं, बड़े हम पढ़ते गए, बाकी लोग चिल्लाते रहे, है ना। देखो बस हाँ 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 ये तो होता ही है ना, यानी उसमें कहीं ना कहीं वो जो कर्तापने का भाव निमित्त रूप से तो है ना। हाँ निमित्त निमित्तिक उसी को कहते जो निमित्त जिसमें नैमित्तिक में कुछ नहीं करता, फिर भी वो होता है वहां पर, उसकी हाजिरी जरूर है। जो हाजिरी है और फिर वो कुछ नहीं करता, ये मानने को तैयार नहीं है। हाँ वही दिखता है, और वो दिखता कब है कि दूसरे का कार्य देखो मैंने किया मैंने किया मैंने किया तब हुआ ना, ये अपने को पूरा कर्तृत्व का अहंकार हो जाता है, ये मिथ्या तो है ना कर्तृत्व का अहंकार। परद्रव्य का कर्ता बुद्धि है तब तक वो मिथ्या दृष्टि है वो, या मेरा कार्य दूसरे के कारण रुक गया है, कोई भगवान आएगा कोई गुरु आएगा तो मेरा कार्य हो जाएगा। हाँ यानी भले हम सत्संगम समागम करेंगे सुनेंगे शास्त्र पढ़ेंगे, परंतु वो तो ये नक्की होना चाहिए किसमें, अपनी श्रद्धा में, कि जो होता है तो उस द्रव्य के अपने से ही होता है, पर द्रव्य से उसमें कुछ नहीं होता। देखते हैं इतने सारे शास्त्र पढ़े तभी तो हमको पता चला ना, पहले तो कुछ नहीं पता चला। हाँ परंतु ये निमित्त रूप से है, हमारी अपनी योग्यता थी तो ये, परंतु जब हम व्यावहारिक यानी जो लौकिक में जब हम देखते हैं तो हम शास्त्रों की गुरु की विनय इतनी करते हैं क्योंकि उनसे हमको मिला। इसको कहेंगे वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त का भी बहुमान कब आता है कि उसके कारण यहाँ कार्य हुआ तो वो निमित्त का भी बहुमान होता है, और ऐसा करने की पद्धति भी वो सहज रूप से होता है। और ऐसा अगर विनय हमें देव के प्रति गुरु के प्रति शास्त्र के प्रति नहीं है तो कहते कि वो सही रास्ते पर भी नहीं है। इसको जिसको कहते बैलेंस होना चाहिए, जो तत्व जो है सिद्धांत है उसको बता के स्वच्छंद नहीं होता। गुरु को ऐसा नहीं कहेंगे तुमसे क्या हुआ मेरे अपने से हो, ऐसा गुरु को नहीं कहेंगे, वहां तो गुरु की विनय ही की जाएगी। यानी दोनों का ही बैलेंस होता है।
मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ।
हाँ जरूर
मनीषा बेन, अभी आप जो सत्य समझ रहे हैं तो स्वयं की योग्यता से समझ रहे हैं, उसमें निमित्त कोई भी अन्य हो उसकी कोई चिंता नहीं है। पहले तक क्यों नहीं समझे, आज तक इतने जन क्यों नहीं समझे, तो आपकी योग्यता नहीं थी। ख्याल में अभी योग्यता हुई तो सत्य बात समझे, लेकिन वो आपके ज्ञान के कारण से आप समझे। कोई गुरु है या बताने वाला है वो उसको आप वो आपके ज्ञान में जाके कुछ गड़बड़ कर दिया है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे वक्त में आपने एक और एक बात बताई कि तुमने क्या किया, मैं मेरे ज्ञान से जान रही हूँ, ऐसी स्वच्छंदता नहीं आएगी, ये भी बात बताई उसने। खास आपको इसलिए बताया कि आपके दिमाग में बहुत चंचलता चलती है ना, तो थोड़ा शांति हो जावे। उपादान और निमित्त में हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करते हैं वो तो बहुत सूक्ष्म हो गया ना,
क्योंकि सूक्ष्म कैसा हुआ
आपने बताया, जब भी मेरा उपादान था तब भी कार्य हुआ, पर वहाँ पे अंतरंग निमित्त नियम से है। तो कोई लोग ऐसे बताते कि आप लोग निमित्त को उड़ा देते हैं।
निमित्त को कहाँ उड़ाते हैं, हम तो उसको स्वीकार करते हैं। तो निमित्त से कार्य होता ही सामान्यता को उड़ाते हैं, निमित्त को नहीं उड़ाते, निमित्त होता ही है ही लगाते हैं, निमित्त होता ही है, कार्य होता है तो दोनों ही होते, उपादान भी है निमित्त भी है। कार्य 100% उपादान से होता है, निमित्त की उपस्थिति है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। निमित्त नाम का द्रव्य अपना ही परिणति कर रहा है और उसके पर्याय इसमें निमित्त हो रहे, वो द्रव्य कुछ नहीं कर रहा है ना, कार्य पर्याय में हो रहा है। कार्य एक समय का है, निमित्त भी एक समय का है, वो कैसे चुन चुन के लाएंगे हम, वो पर्टिकुलर द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, इस कार्य में वो अनुकूल होने का आरोप का ही अर्थ होते उपचार है, उपचार यानी वो सत्य नहीं है, हम कह देते कि इसके कारण हुआ, पर उसका जो कार्य उस द्रव्य का उसके अपनी योग्यता पर अपने समय में होगा और हमारा कार्य अपनी योग्यता से अपने समय में हो रहा है, हम किसी परद्रव्य का निमित्त नाम के जो कोई कार्य हो रहा है उसको कैसे कर दे वो परद्रव्य के कार्य। इसलिए किसी निमित्त को ना हम ला सकते ना हटा सकते ना कुछ कर सकते।
अश्विन भाई आप एक बात ध्यान रखना, जो निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानता है उसकी श्रद्धा खोटी, और जो निमित्त है ही नहीं ऐसा जो कहता है उसका ज्ञान खोटा। तो आपको क्या खोटा चाहिए, श्रद्धा या ज्ञान?
निमित्त होता है उसका ज्ञान करना है।
देखो निमित्त से कार्य होता है ऐसा जो मानते हैं उसकी श्रद्धा खोटी है, और ये जो निमित्त होता ही नहीं ऐसा वो कहते हैं उसका ज्ञान खोटा है। यानी निमित्त होता है लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है, ये बात हमको कन्फर्म करनी है।
ये जो कारण कार्य पुस्तक है ना उसमें वो निमित्त उपादान संबंधी बहुत है, निमित्त निमित्त नैमित्तिक संबंध उपादान उसके भेद प्रभेद 4-5 चैप्टर्स है, वो फिर से दोबारा पढ़ना। वो हम लेते हैं ना शिविरों में तो पूरे 10-10 दिन तक वो उसको लेते हैं, इतना उसमें मैटर है। और वो जब तक सही नहीं, यानी वो अंदर से दृढ़ता नहीं होती है ना, तब तक ये सब ऐसी उपादान निमित्त की कंफ्यूजन चलता है, तो उसको कैसे सम्यक तो होगा। देखो ख्याल में आती है ना, ये कारण विपरीतता कहते उसको, कारण संबंधी विपरीतता कायम है तो तब उसको समय ज्ञान नहीं है, समय दर्शन नहीं है। ये आता है ना समिथ्या ज्ञान की, स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, ये सब विपरीतता को पहले हम सही ज्ञान करेंगे उसका, फिर अपने बुद्धि से उसका निर्णय भी होना चाहिए कि ऐसा ही है बिल्कुल, कुछ भी हो जाए तो ये सिद्धांत में इतने अड़िगता आनी चाहिए अपने से, दृढ़ता अपने बोलने के लिए नहीं, बिल्कुल कि प्रत्येक द्रव्य है तो उसका परिणाम अपने से अपनी शक्ति से होता है, बस ये बात। यहाँ जो अंतरंग कारण कहा यह है उपादान, अंतरंग निमित्त नहीं कहा, अंतरंग कारण कहा। केवल कारण में अंतरंग बहिरंग ऐसा कहेंगे, अंतरंग कारण बहिरंग कारण, तो अंतरंग कारण यानी उपादान, बहिरंग कारण यानी निमित्त। और जब निमित्त में अंतरंग बहिरंग, निमित्तों को अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त कहेंगे, अंतरंग निमित्त यानी सभी जीवों के लिए जो कॉमन को या नियम से जो होगा, जैसे सम्यक दर्शन हुआ प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ, तो नियम रूप निमित्त क्या, अंतरंग निमित्त तो जीव की योग्यता, निमित्त में क्या लेना, जिसको जिसको चारों गति में प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ उसके वो कर्मों की उपशम रूप अवस्था हुई, ये नियम रूप निमित्त, उसको अंतरंग निमित्त कहेंगे। बहिरंग निमित्त में क्या देखते हैं कि जिन बिंब दर्शन, देवों में दूसरों के ये जो वहां का ऐश्वर्य का देखना, नरकों में वेदना, कहीं अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं, ख्याल में आती है बात, इसको कहेंगे बहिरंग निमित्त। परंतु सब में होना ही चाहिए कौन सी, वो उपशम रूप अवस्था कर्मों में। निमित्त में जब अंतरंग बहिरंग कहेंगे तो नियम रूप निमित्त और जो अलग अलग निमित्त होते हैं अलग अलग जीवों में उसको बात करेंगे, और जब कारणों में अंतरंग कारण और बहिरंग कारण कहेंगे तो अंतरंग कारण यानी उपादान, बहिरंग कारण यानी निमित्त। कभी कभी द्रव्यों की जब बात करनी है, एक द्रव्य में गुणों को समझाना है जुदे जुदे, तो एक गुण को दूसरे गुणों में या पूरे द्रव्य में निमित्त कहने में आता है। अस्तित्व गुण के निमित्त से द्रव्य की सत्ता कायम है, वस्तुत्व गुण के निमित्त से द्रव्य अपना अपना कार्य करता है। वहां एक ही द्रव्य में भेद करके समझाने के लिए एक गुण को दूसरे गुणों में निमित्त कहने आता है, वो तो प्रयोजनवश ऐसा भेद करते हैं। वो एक द्रव्य में हमने भेद करके एक गुण से दूसरे, क्योंकि ज्ञान का अस्तित्व अपने से है परंतु उसमें निमित्त अस्तित्व गुण, ऐसा कहेंगे। एक ही द्रव्य में भिन्न भिन्न गुणों को समझाना है तो, परंतु जो हम पूरे द्रव्य की पर्याय की बात करते हैं तो परद्रव्य और उसकी पर्याय उसमें निमित्त है।
कभी स्वयं अभ्यास करते हैं और हम लोग को समझ में नहीं आता है, इन स्पाइट ऑफ रीडिंग इट फॉर 2-3-4 टाइम्स, पीछे मैं छोड़ देता हूँ कि नहीं मैं आपको पूछ लूंगा।
हाँ।
कभी क्या उपादान कारण,
हाँ देखो हमारी आपका ये प्रश्न मैं फिर रिपीट करती हूँ, इनका ये प्रश्न है कि घर में कोई टॉपिक है और हम पढ़ते दो बार चार बार वो नहीं समझ में आता है, बहुत ट्राई करने पर भी, तो छोड़ देते हैं, फिर किसी को पूछते हैं तो उसका कारण क्या है, तब समझ में आता है। तो उसका कारण यही है कि ज्ञान की प्रत्येक समय की पर्याय अपने द्रव्य के उपादान से ही उत्पन्न होती है, क्या जानना, कितना जानना, कैसे जानना, वो सब वहां सामने निमित्त है। अब जहां हम वो नहीं समझने रूप परिणमन हो रहा था, उस संबंधी ज्ञान नहीं हो रहा था मान लेते, तो वहां वैसे योग्यता नहीं, उस समय ज्ञान अन्य जो कुछ उसका कार्य हो रहा था, जितना जानन हो रहा था वो उसका कार्य हुआ, और जब वो ज्ञान की योग्यता हुई समझने की तो सामने किसी को पूछा उसने समझाया। यानी मूल में अंतरंग में ये तो दृढ़ता से यही नक्की करना है, बाह्य में हम जब व्यवहार चलता है हमारा आचरण चलता है तो ये नहीं समझ रहा है तो हम किसी को पूछते आपको समझ में आएगा, नहीं तो हमारे टीचर से पूछते हैं, अन्य किसी को पूछते हैं, ये अर्थ क्या है? जब समझ में आया तब क्या कहेंगे, अपने उपादान से समझा, तब आरोप किस पर आएगा, इनके कारण हमको समझ में आएगी बात। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ये सिद्धांत दृढ़ता से मन में धारण करना है। बाहर में बोलने तो ऐसे कहीं ना, आपको नहीं समझ में आया ना, वहां चले जाओ वहां समझेगा, हम बार बार कहते ना कंजी स्वामी के कारण हमको ये सब बातें इतनी क्लियर हो गई, इतनी स्पष्टता आ गई, इसमें सिद्धांतों में इतनी दृढ़ता आई, क्यों आई, तो उनके उपकार क्यों मानते हैं बारंबार? वो सिद्धांत अपने अंतरंग में बिल्कुल दृढ़ता से स्थापन करने हैं, और बाह्य जो लौकिक व्यवहार होता है, जो निमित्तों का विनय आदि होता है, उनके ऊपर सहज रूप से वो भाव, ऐसा नहीं कि वो करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी भी जबरदस्ती नहीं है। हाँ,
मैंने क्यों पूछा कि कभी मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये समझ में नहीं आता है कि छोड़ देता हूँ, तो वो सत्संग दत्ता तो नहीं कहलाएगी ना?
नहीं नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, वो समय छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, उसको आप यानी जो सिद्धांत है उसको तो दृढ़ता से ही रखना है, कि अभी तो नहीं योग्यता इसीलिए नहीं समझा, परंतु ऐसा समझकर वो स्वच्छंदता को पोषण नहीं करना है, नहीं समझते ना, हमारे उपादान नहीं है, ऐसा लोग समझ ऐसा करते हैं क्या, हमारे बच्चे को अभी वो ध्यान नहीं दे रहा है, अभी नहीं सुन रहा है, हमने बहुत कोशिश की, उसका काल आएगा तो समझेगा, उसका काल आएगा तो समझेगा, वो जब दुकान में जाना है, स्कूल में डालना है, तब ऐसा नहीं कहते उसका काल आएगा तब समझेगा, समझ में आते ना, यानी ये जो सिद्धांत है उसको स्वच्छता के तौर पर नहीं यूज करना है। बच्चा स्कूल में नहीं जाता है, पढ़ता है नहीं, फेल होता चला जाएगा 10-10 साल तक, तो कहेंगे उसका काल आएगा तब पास होगा, ऐसा कहते हैं? उसके लिए तो सारी कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे, ट्यूशन रखेंगे, उसको पढ़ाएंगे, हम तो उस बारंबार उसको बताएंगे, ऐसे ही यहाँ पर अपने को ही समझाना है, किसी दूसरे को नहीं है। सिद्धांतों को पक्का करना है, कोई एकाध करना नियोग की बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं है ना, उसके पीछे का जो निमित्त उपादान है, षटकारक है, जो अन्य जितने सिद्धांत आपको क्रमबद्ध के है, हा? वो सिद्धांतों के जो द्रव्य गुण पर्याय सामान्य गुण उनके जो अभाव वगैरह जो 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 सिद्धांत है उसमें कोई यानी बिल्कुल दृढ़ता से उसको करना ही करना है। और फिर जितना हम यह पढ़ते हैं कर्णान योग वगैरह उसमें वो उसको सिद्धांतों को बल मिलता है, ऐसा नहीं कि यहाँ भले निमित्तों से कह रहे कि इतनी स्थिति बांधी जीव ने, अरे जीव तो कर्म को छूता तक नहीं, फिर भी ये कथन हो रहा है ना, निमित्त से कथन करने में कोई दोष नहीं, क्योंकि कथन तो निमित्त से होते ही है, परंतु कार्य तो उपादान से ही होता है ये नक्की है। जीव के जब इतने संकलेश नहीं है, थोड़े मंद परिणाम है, तब ये कर्मों की इतनी स्थिति उनके स्वयं में वो अपने योग्यता से बनती है, फिर भी कथन हम हर एक बार यही योग्यता योग्य नहीं था, हमने एक बार समझ लिया, अब हम निमित्त से कथन करेंगे, क्योंकि कर्णान योग के ग्रंथ पढ़कर ये निमित्ताधीन दृष्टि और पुष्ट करने वाले बहुत लोग हैं। हमें ये पहले हमने द्रव्यान योग को पक्का किया है स्वामी जी के कारण, वो बिल्कुल निर्णय तक पहुंच गए, तो अभी हम कर्णान योग को पढ़कर भी उसमें से अपने सिद्धांतों को पुष्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बताए ना कि शालिधान के बीज बोने से कोई जौ की उत्पत्ति नहीं होती है, उसमें जो अंतरंग में निमित्त अंतरंग कारण है ना, उसका उपादान, उसी से वो कार्य होगा।
ये क्या हो रहा है, कभी हम लोग पढ़ते हैं, तीन चार बार पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता है, और पीछे में एक बात ठान लेता हूँ कि नहीं ये मेरे को करना ही है, तो वहाँ पे कर्तृत्व बुद्धि का,
कर्तृत्व बुद्धि नहीं, सा नहीं, वो तो वो विचार आना नहीं, मुझे क्यों नहीं समझता, समझेंगे हम तो, हम बारम्बार उसके प्रति प्रयोग करेंगे, क्रियाशील रहेंगे, तो ये तो पद्धति है ना। आप कुछ प्रश्न पूछते हैं तो लौकिक की अपेक्षा पूछते हैं, और कहीं तो सिद्धांतों की अपेक्षा बात होती है, तो सिद्धांतों की जब बात करें तो सिद्धांत कहीं समझना है, और फिर हम लौकिक में क्या करें क्या करें, कुछ नहीं, जो हो रहा है ना, आपको जो जिस भूमिका में है कहो, या जो जिस जो कोई जिसके कौन से परिणाम के कौन से टाइप के राग आएंगे, राग यानी परिणाम होंगे, समझने का ही लिए ट्राई करेगा या छोड़ देगा, ये उस जीव के अपने अपने पर निर्भर है। उसमें ये करूँ क्या वो करूँ उसकी बात नहीं, मान्यता में नक्की करना है। नहीं नहीं, जैसे हम लौकिक में भी कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, हम करके दिखाएंगे, अन्य भी उसमें प्रयत्न करते हैं कि नहीं करते, इसकी बात छोड़ो, पैसा कमाना है, व्यापार धंधा करना है, कोई चीज बिगड़ गई है कहो, घर बांधना है, क्यों नहीं होता है, इस आदमी को नहीं दूसरे को बुलाएंगे, कुछ करके वो करेंगे, वो बातें जुदी है कौन से, क्योंकि जिसका वहां पर भी वही वैसी बुद्धि होगी जैसी भवितव्यता है, तादृशी जायते बुद्धि आदृशी भवितव्यता, वो कार्य वैसे ही होना है, हम कहेंगे ना हाँ इसके हाथ में गया तो अभी हो जाएगा, ऐसा होता है ना, नहीं तो कितने कुछ ऑब्स्टेकल आते तो हम छोड़ देते जल्दी। चलो, यानी लौकिक में क्या करना नहीं करने की बात ही नहीं, करना नहीं करने के विकल्प ने अभी कंफ्यूजन है, ये तो होने योग्य तो होते ही रहेगा, ये मेरा कार्य नहीं है, मेरा कार्य तो उस समय भी जानने का चल रहा है, मुझे ऐसा परिणाम आया और ये ऐसा हुआ, वो तो बाद में हम उसको कहेंगे, तो मैंने डट के रहा तब में जो समझ में आया ना, यानी वो हम इच्छा के ऊपर डालते हैं कि हमारी इच्छा के कारण हुआ ऐसा लगता है, हमें ही उस पर अपना ही विश्लेषण करना है ना कि, और हमको तो बेसिक सिद्धांत मालूम है, वो सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए उसका अर्थ निकालना है,
इसी को कहते प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कुछ नहीं सिखाते, अरे ये यह सिद्धांत हमें प्रैक्टिकल में लाने हैं, दैट इज प्रैक्टिकल, एक कोने में जाके ऐसा पलटवार के मैं आत्मा आत्मा करने को प्रैक्टिकल नहीं कहेंगे, वो तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से नहीं होता, ध्यान सहज होता है, वैसे यहाँ
नहीं, जिसके ऐसी दृढ़ता हो गई है बैठेगा शांति से, फिर आत्मा का विचार करेगा वो भी करेगा ना, उसके लिए वैसे परिणाम हो जाएंगे शांति से बैठकर सोचने के।
नहीं नहीं हाँ। ये जो आरोप आता है कि आप प्रैक्टिकल कुछ नहीं बताते, प्रैक्टिकल, अरे यही तो प्रैक्टिकल है कि जो हमने निमित्त उपादान का जो सिद्धांत सीखा है वो अभी हम
निमित्त उपादान दिन भर अप्लाई करो,
यानी हम उसमें उच्छृंखलता कहो या जिसको हम कहेंगे कि उधम नहीं करना है, हमें तो तत्व जिससे समझा है उसके प्रति तो अहोभाव आता ही है, आएगा ही, जैसे हम धंधा पानी में किसी का टिप लेते हैं और उसमें बहुत पैसा कमाते तो उसके उपकार मानते कि नहीं, नहीं मानते।
ये सहज रूप से ये विचार चलते हैं, अभी अभी तो मैं प्रैक्टिस छोड़ के मुझे कितने साल हो गए, 23-24 साल तो उसके हो गए, उसके पहले भी, अभी ये तो अभ्यास तो बहुत साल से 75 से चलता है ना, जैसे पेशेंट को गोली देते हुए ऐसा लगता था अरे ये गोली तो ये अपने उपादान से जा रही है, ये क्या करे हम क्या करे इसमें, इससे अभी भी कुछ रसोई में कुछ बात होती, कुछ चीजें ज्यादा निकाली फिर डाल रहे, जैसे कौन सी जाएगी अंदर, वो उसके अपने कारण जा रहे कि हम डाल रहे इसलिए जा रहे, यानी चार गोली निकाली हमको तीन ही रखनी है एक वापस डालनी है, तो मैं मुझे तो ऐसा विचार रहता है ये तो अपनी योग्यता से जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर नहीं है कि कौन सी अंदर डाले और कौन सी बाहर रखे, ये सहज ऐसे विचार आते हैं, ऐसा कोई उसके लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, यानी होते हुए प्रतिभासित होने लगते हैं कार्य, और पहले क्या होता था उसमें अपनी करते तो बुद्धि लगती थी कि मैंने सोचा इसलिए ऐसा हुआ, नहीं मैंने नक्की किया ये कौन करेगा क्या करेगा, ये कितनी निराकुलता शांति मिलती है। आगे बढ़ेंगे, ये अपना विषय हो गया बाजू, ये पेज नंबर 164 अभी लास्ट लाइन पढ़ेंगे हम। देखो ये थोड़ी इसको पढ़ते हैं, देखो ये थोड़ा रह गया, फिर मैं पढ़ती हूँ तीसरी लाइन लास्ट। किंतु उस प्रकार के द्रव्य, उस प्रकार के द्रव्य ने ऐसे कोई निमित्त नहीं है, तीनों ही कालों में किसी भी क्षेत्र में नहीं है कि जिनके बल से शाली धान्य के बीज से जौ के अंकुर की अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति हो सके। यदि ऐसा होने लगेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा, सब केओस हो जाएगा। कि हम चाहते थे शाली धान है और हमने बोया तो निकला गऊ। इसलिए कहीं पर भी अंतरंग कारण से, यहाँ अंतरंग कारण है ना, उपादान से, अंतरंग निमित्त नहीं कहा है, अंतरंग कारण कह दिया। जब कारण में अंतरंग बहिरंग लगाएंगे तो अंतरंग कारण है ना उपादान, बहिरंग कारण है ना निमित्त। अंतरंग कारण से ही लगाया, कार्य की उत्पत्ति होती है ऐसा निश्चय करना चाहिए। पल्लवों के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र, क्या कहते हैं, पल्ल डिवाइडेड बाय असंख्यात, उसका उत्तर कितना आता है, तो पल्ल के प्रथम वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो इतने आते हैं। इसलिए कहते हैं पल्ल के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र एवं सर्व कर्मों की समान प्रमाण वाली गुणहानि का, ये बात हमने कल देखी थी ना, हमने तो उसकी संदृष्टि आठ मानी है। गुणहानि का प्रमाण कितना है, आठ, आठ समय हमने माना है। यथार्थ में वो कितना है, तो पल्ले के असंख्यात वे भाग इतना है। वो पल्ले का असंख्यात भाग करो तो उसको उत्तर कितना आएगा, असंख्यात प्रथम वर्गमूल पल्ले के। तो यही कहते पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल मात्र एवं सर्व कर्मों की समान प्रमाण वाली गुणहानि, यानी ये जो गुणहानि का प्रमाण है वो सर्व कर्मों में समान होता है। ये दो बातें बताइए, उसका आयाम कितना है तो पल्ले का असंख्यात विभाग, और सर्व कर्मों में वो समान प्रमाण है, ऐसे गुणहानि का विवक्षित उत्कृष्ट स्थिति में भाग देने पर नाना दुगुण हानि शलाकाएं उत्पन्न होती है। वो दु शब्द डाला उन्होंने, दुगुण हानि ने द्विगुण हानि, यानी उसका उसका अर्थ होता है गुणहानि। यानी क्या कहते हैं यहाँ पर, स्थिति डिवाइडेड बाय गुणहानि इज इक्वल टू नाना गुणहानि। हमने 48 समय की स्थिति मानी थी और उसको गुणहानि का प्रमाण 8 से भाग दिया तो हमारा नाना गुणहानि का प्रमाण 6 आया था। यही यहाँ बता रहे कि जो कर्म स्थिति है यानी उनिशेक स्थिति, उसको गुणहानि का भाग देंगे। अभी हमने जितनी जो यहाँ देखी है उसको गुणहानि के प्रमाण से भाग देंगे तो नाना गुणहानि शलाकाए, नाना गुणहानि का प्रमाण मिलेगा, उसी को नाना दुगुण हानि शलाका बताए।
देखते हैं विशुद्धि में स्थिति कांडक घात होते है तो वहाँ पे जो कांडक होते हैं वो प्रत्येक कर्म में अलग अलग होगा, क्योंकि नाना गुणहानि अलग अलग है।
स्थिति कांडक से नाना गुणहानि का संबंध नहीं, एक बात। और जो स्थिति कांडक होते हैं स्थिति के अनुसार कांडक का प्रमाण होता है।
अच्छा, प्रत्येक कमरे कर्म के अलग अलग
जुदी जुदी हो गए। अब ये सबको बताना स्थिति कांडक क्या होता है। देखो अनेक निषेकों में से पहले कुछ परमाणु है, दूसरे समय में, तीसरे समय में, कर करके उतने सारे ऊपर के निषेकों का घात हो जाता है कांडक में। कांडक यानी टुकड़ा, यानी पूरा का पूरा उतना कर्म के जो इतने मान लेते, इतनी स्थिति थी सत्ता में पड़े हुए, और इतने सारे निषेकों में से वो उसकी घटकर वो नीचे के निषेकों में आ मिलते, उसको कहेंगे स्थिति कांडक घात। तो जितनी स्थिति लंबी हुई उसके कांडक का प्रमाण उसके अनुरूप होता है। अब यहाँ हम देखते हैं सेकंड लाइन 165 पेज, नाना दुगुण हानि शलाकाओं के द्वारा, इसी को नाना गुण हानि कहते हो, विवक्षित कर्म स्थिति में भाग देने पर गुणहानि का प्रमाण आता है। जैसे हमारे उदाहरण में देखते 48 को 8 है ने गुणहानि का भाग दिया तो नाना गुणहानि 6 आ गई। अगर 48 को नाना गुणहानि 6 का भाग देंगे तो एक गुणहानि का प्रमाण 8 आएगा। ख्याल मैंने यहाँ क्या कहा, दुगुणहानि, क्योंकि गुणहानि शब्द द्विगुणहानि, दो गुणहानि यानी आधा हो जाता है, उससे ये शब्द तैयार हुआ है। नाना गुणहानी कहने की पद्धति है, उसी का नाम है नाना दुगुणहानी, उसको द्विगुणहानी भी कहेंगे। ये तो उसमें शब्द अलग आया तो अर्थ कुछ बदल नहीं जाता। तो नाना दुगुणहानी शलाकाओं के द्वारा विवक्षित कर्म स्थिति में भाग देने पर गुणहानि का प्रमाण आता है। समझ में आई बात? 48 को 8 से भाग देने पर 6 आता है और 6 से भाग देने पर 8 आता है, बस इतना ही कहना है यहाँ पर। एक समय कम, दो समय कम आदि कर्म स्थितियों में अंतिम गुणहानि विकल अर्थात उत्तरोत्तर हीन होती है। यहाँ पर जानकर नाना गुणहानि शलाकाएं कहना चाहिए अर्थात कर्म निषेकों का विवरण करना चाहिए। एक समय कम, दो समय अधिक कर्म स्थितियों में अंतिम गुणहानि विकल अर्थात, हाँ वो अंतिम गुणहानि कम ज्यादा होगी। यहाँ क्या कहना है, कितनी स्थिति बंदी है, जैसे 48 समय की स्थिति बंदी है तो उसमें तो हम 8 गुणहानि, 8 समयों की एक गुणहानि होती है तो 6 गुणहानि बने। तो कभी कभी 48 समय के बदले 45 निषेक बंदे, स्थिति बंदी, तो 8 की तो गुणहानि है तो 8 से भाग देंगे, 8 × 5 = 40, तो 40 से 5 तो गुणहानि हुई और उसके बाद कितने रह गए ऊपर, 5 ही रह गए, पूरी गुणहानि नहीं रही, उसको विकल कहेंगे। अंतिम गुणहानि विकल होती है, विकल है ने अंतिम गुणहानि पूरी नहीं होगी, उसमें से कुछ कम भी हो सकता है क्योंकि गुणहानि पूरी पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण निषेकों की होगी तो उसमें हो सकते है ना 10-25 लाख भी निषेक हो जाएंगे तो फिर वो पूरी नहीं होगी, ये कहना चाहते। ऋण दुऋण आदि कम्मठिदिषु अवसान गुणहानि विकला होदी, विकल होती है परंतु उत्तरोत्तर हीन होती है, ऐसा क्यों कहा? विकल का अर्थ उत्तरोत्तर हीन, ऐसा हाँ वो बराबर है ना। उत्तरोत्तरहीन होती है, जितनी कर्म स्थिति कम है उतनी गुणहानि कम है, इसलिए उत्तरोत्तरहीन। एक समय कम होगी तो गुणहानि में एक समय कम रह गया, 48 समय के बदले एक समय कम हीन वाली होगी कर्म स्थिति, 47 होगी तो गुणहानि में एक समय कम, 46 होगी तो गुणहानि में दो समय कम, 45 होगी तो गुणहानि में अंतिम गुणहानि में 3 समय कम, इस तरह कह रहे। यहाँ पर जानकर गुणहानि शलाकाएं कहना चाहिए अर्थात कर्म निषेकों का विवरण करना चाहिए। उदाहरण मान लो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति 48, ये हमने आबाधा से माइनस करके उत्कृष्ट स्थिति देखी थी, जो हमने पहले 64 मानी थी, आबाधा उसमें से 16 समय माना था, आपको याद है ना, वही गणित उदाहरण चालू रखा है। तो 48 समय की निषेक स्थिति है, इसी को यहाँ कर्म स्थिति कह रहा। आबाधा काल 16 और गुणहानि आयाम 8 है तो नाना गुणहानियों का प्रमाण होगा। अभी है ना उत्कृष्ट स्थिति में से वो कर दिया, 64 नहीं मानते, 48 मान लिया उन्होंने, 48 − 16 / 8 32 / 8 = 4, यानी ये आबाधा सहित वाली उन्होंने स्थिति मान ली। यहाँ पर पहले हमने गणित जुदा माना था, यहाँ जुदा है। अब यदि कर्म स्थिति एक कम हुई तो नाना गुणहानियां हुई 31/8 अर्थात 3 गुणहानियों का आयाम तो 8 ही रहेगा किंतु अंतिम गुणहानि का आयाम 7 होगा। यदि कर्म स्थिति 2 कम हुई तो अंतिम गुणहानि आयाम 6 रह जाएगा। इसी क्रम से जितनी स्थिति कम होगी उसी प्रमाण से अंतिम गुणहानि हीन होती जाएगी, यही उसका कहना है। यानी उसको गुणहानि तो कहेंगे परंतु वो तो एक समय कम, दो समय कम आदि होगी। यानी ऐसा नहीं कि बाकी गुणहानियां तो पल्ले के असंख्यात विभाग है और ये गुणहानि ऐसी कैसी कम, यानी उतने निषेक उसमें कम रह गए, फिर भी उसको कहेंगे ये अंतिम गुणहानि है क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे कहेंगे, 3 तो पूरी हो गई और अंतिम कुछ हीन रह गए। अब आगे बढ़ते हैं। वे वे का बे बे वास सहस्राणी आबाधा, क्योंकि हमने 20 कोड़ाकोड़ी सागर देखी थी तो 2000 वर्ष होगी उसकी। नपुसक वेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियों की उत्कृष्ट कर्म स्थिति का आबाधा काल 2000 वर्ष है। यहाँ पर त्रैराशिक करके आबाधा और आबाधा कांडकों को ले आना चाहिए। कांडक कैसे हो गए, तो हमने 20 कोड़ाकोड़ी सागर डिवाइडेड बाय 2000 वर्ष। कांडक का प्रमाण हमने देखा था, सभी कर्मों के लिए वैसा ही होगा, क्योंकि 70 कोड़ाकोड़ी डिवाइडेड बाय 7000 वर्ष, 30 कोड़ाकोड़ी डिवाइडेड बाय 3000 वर्ष, या 20 कोड़ाकोड़ी डिवाइडेड बाय 2000 वर्ष, यानी आबाधा कांडक का प्रमाण तो वैसा का वैसा होगा। आबाधा की वृद्धि और हानि संबंधी स्थान तथा अवस्थित आबाधा के होने पर स्थितियों के आयाम का प्रमाण पूर्व के समान प्ररूपण करना चाहिए। हमने ये देखा था विशेष कांडक किसको कहना, अनेक अलग अलग स्थितियों के लिए समान आबाधा होती है उसको एक कांडक कहते हैं, उतनी स्थितियों को। अब आगे बढ़ेंगे। आभा धुनिया कम्मठिदि कम्मणिसेगो, नपुसक वेदादि पूर्व सूत्रोक्त प्रकृतियों के आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति प्रमाण उनका कर्म निषेक होता है। निषेक कितने बनेंगे, तो जितनी कर्म की स्थिति बंधी है उसमें से आबाधा काल को माइनस करो, बाकी जो है उसमें एक एक समय में एक एक निषेक बनेगा, उसको कर्म निषेक कहा। यहाँ पर 2000 वर्ष प्रमाण आबाधा काल से हीन कर्म स्थिति की गुणहानियों में प्रक्षेपक संक्षेपेण इत्यादि करण सूत्र के अनुसार पूर्व के समान प्रदेश रचना करना चाहिए, शेष सूत्रार्थ सुगम है। प्रक्षेपक संक्षेपेण आपको याद है ना, अंतिम गुणहानि को एक माना, फिर उसके नीचे के दो, फिर उसके चार, फिर इस तरह से उसकी टोटल की थी हमारे, वो उसमें हमने देखा था 63 निकला, उससे 6300 को भाग दिया था और फिर अंत से नीचे की तक प्रत्येक गुणहानि का द्रव्य मिला था। यही पद्धति से यहाँ करना चाहिए, ये कहना चाहते। वहां हमने 6 गुणहानियां मानी थी, यहाँ तो कम हो जाएंगे। 20 कोड़ाकोड़ी के लिए वो 4 ही गुणहानियां होगी, है ना, वहां 30 कोड़ाकोड़ी के लिए 6 देखी थी हमने। अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आयु की बात करेंगे। निरयाऊ देवाऊस उक्कसो ठिदिबंदो 33 सागरोवमाणी, नारकायु और देवायु का उत्कृष्ट स्थितिबंध 33 सागरोपम है। यह देव और नारकियों की आयु की उत्कृष्ट निषेक स्थिति है। निषेक स्थिति यानी इतना उदय काल उसका होगा, जितनी आयु बनते हैं उतने ही निषेक बनेंगे। अन्य कर्मों में इसमें क्या डिफरेंस है, देखो मिथ्या तो कर्म बांधा 70 कोड़ाकोड़ी सागर, निषेक कितने बने, 70 कोड़ाकोड़ी सागर के जितने समय है माइनस 7000 वर्षों के समय, उतना उसका निषेक बने। आयु कर्म में निषेक कितने बने, जितनी आयु बांधी उतने ही निषेक बने, क्योंकि उसका उदय आबाधा कहाँ, इस भव में पार होगा, और आयु कितनी भोगेगा, जितनी बांधी उतनी पूरी, आबाधा इस भव में कहने में आएगा। अभी मान लेते ना, अभी मरण के लिए 30 साल बाकी है, 90 साल की आयु बांध के आया था यहाँ की, और उसने 60 साल पूरे हुए, 30 साल बाकी है, तब उसने नेक्स्ट आयु बांधी, तो नेक्स्ट आयु मान लेते हैं 100 साल की और बांधी, तो 100 साल के जितने समय उतने उसके तो भोगेगा, और उसकी आबाधा कौन सी, इस भव में जो 30 साल बाकी है वो उसकी आबाधा कहलाएगी, यानी आबाधा पूर्व भव में गिनते हैं उसकी, जितनी बांधी उतनी पूरी भोगेगा। आयु कर्म में जितने उसका स्थिति बंध हुआ है उतना ही उसका उदय काल है, तो आबाधा कम होगी, आबाधा अंतर्मूर्त प्रमाण रहेगा। जो आयु के अंत में आयु नेक्स्ट आयु बांधता है ना, और उसके बाद अंतर्मूर्त प्रमाण रहकर फिर मरता है, तो जो आयु बंधने के बाद जितना काल रहा है, जिसको असंक्षेपाधा अवलिक असंख्यात पे भाग भी कहते हैं, उतनी उसकी आबाधा होगी। बस हो या नहीं उसमें क्या है, आबादा कहते उसको है कि बंधने के बाद फोन बंद हुआ उसका। हाँ, आबादा इस भव में आयु बंध के बाद जो रिमेनिंग काल है उसी को आबादा कहेंगे। वो सब में तो आबादा काल जुदा है, यानी जितना बंधा है उसमें से आबादा को माइनस करना पड़ेगा। आयु में माइनस नहीं होता, वो माइनस पहले भव में चला जाता है, यही कहते। यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध कहेंगे, फिर उसके निषेक भी कहेंगे। हम यह देव और नारकियों के आयु की हाँ, हम यहाँ 166 पेज पर देख रहे थे, ऊपर पढ़ा ना हमने, निरयायु देवायुस्य उक्कसौ ठिदिबन्धो तेत्तीसम सागरोपमाने। उसका अर्थ नारकायु और देवायु का उत्कृष्ट स्थितिबंध 33 सागरोपम है। यह देव और नारकियों के आयु की उत्कृष्ट निषेक स्थिति है। जितना स्थितिबंध होता है उतनी निषेक स्थिति होती है, क्योंकि देव और नारकियों में यथाक्रम से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीवों की गुणस्थान संबंधी स्थिति का सूत्र में अर्थात कालानुयोग द्वार सूत्र में 33 सागरोपम प्रमाण निर्देश किया गया है। यानी गुणस्थान संबंधी स्थिति, यानी चौथे गुणस्थान में कितने काल तक, तो 33 सागर तक वहां रह सकता है। मिथ्या दृष्टि एक भव में तो कहते को 33 सागर का नारकी है, एक भव की बात है ना स्थिति की। शंका, यहाँ पर नारकायु और देवायु की उत्कृष्ट स्थिति प्ररूपणा में आबाधा के साथ उत्कृष्ट निषेक स्थिति किस लिए नहीं कही? समाधान, नहीं, क्योंकि यहाँ पर अर्थात आयु कर्म की स्थिति में निषेक स्थिति की अपेक्षा न करके आबाधा की प्रवृत्ति होती है। यानी कितनी बंधी उसके उसके प्रोपोर्शन में आबाधा नहीं है, ये कहना चाहते। क्या कहा? आयु कर्म की स्थिति में निषेक स्थिति की अपेक्षा न करके आबाधा की प्रवृत्ति होती है। यानी कितनी आयु बांधी उस पर कुछ नहीं है। मान लेते वन थर्ड पूर्व कोटि बाकी है और उसने एक छोटी आयु बांध ली मनुष्य की, हो सकता है वो आबाधा इतनी बड़ी और आयु तो थोड़ी बांधी, ये भी हो सकता है। या अंत अंत में छोटी अंतर्मूर्त बाकी है और आयु बड़ी बांधी, ये भी हो सकता है। यानी कितने निषेक स्थिति बांधता है उस पर आबाधा निर्भर नहीं है। इस बात का प्ररूपण करना ही उत्कृष्ट स्थिति प्ररूपणा में आबाधा के साथ उत्कृष्ट निषेक स्थिति न कहने का फल है। जिस प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मों की आबाधा निषेक स्थिति के परतंत्र है, परतंत्र ने उसके प्रोपोर्शनेट है, जितनी निषेक स्थिति ज्यादा उतने वो आबाधा उसकी ज्यादा, उस प्रकार आयु कर्म की आबाधा और निषेक स्थिति परस्पर एक दूसरे के अधीन नहीं है, ये मुख्य बात बता रहे। और ज्ञानावरणादि कर्मों को अन्य सात कर्मों को पराधीन क्यों कहा? कि जितनी स्थिति ज्यादा है उतनी आबाधा ज्यादा है, प्रोपोर्शन है। और यहाँ ऐसा कोई प्रोपोर्शन है दूर में, आबाधा ज्यादा हो सकती है आयु कम बंधी, ऐसा हो सकता है आबाधा कम हो आयु अधिक बंधी, ये भी हो सकता है। ख्याल में आई बात? ख्याल में आई कि नहीं आई? हाँ, किसी ने आयु का बंध किया नहीं, मरण के एक साल पहले बंद किया, और एक साल पहले आयु का बंध कितना किया तो कहते कि तो पल्लों का किया, एक साल आबादा और पल्ले प्रमाण स्थिति बांधे, ऐसा भी हो सकता है। और किसी ने ऐसा भी होगा अंतर्मूर्त बाकी है और छोटी आयु बांधी, या बड़े बड़ा आबादा यानी वन थर्ड पूर्व कोटि पहले आयु बांधी और अंतर्मूर्त की बांधी, ये भी हो सकता है। कितना भी उसके जैसे परिणाम आए आयु के योग्य, वैसे छोटी बड़ी आयु बांधेगा, कब बांधेगा उतनी आबादा कहलाएगी। यानी वो एक दूसरे से कोई अपेक्षा नहीं रखते। यह बात बतलाने के लिए यहाँ पर आयु कर्म की निषेक स्थिति ही प्ररूपण की गई है। इसका यह अर्थ होता है पूर्व कोटि वर्ष के त्रिभाग, देखो त्रिभाग की अपेक्षा क्यों करते हैं? आयु का बंध जब होता है कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों में, जितनी वर्तमान भुज्यमान आयु है, भोगने वाली जितनी आयु है, जितना लेकर उसके आया था, उसके त्रिभाग करना। त्रिभाग यानी 2/3 1/3। तो जब एक तृतीयांश त्रिभाग बाकी है, तब पहले अंतर्मुहूर्त में उसका आयु बंधने का अवसर हो सकता है, आयु बंध सकती है। वहां बंधेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं, बंधेगी नहीं भी बंधेगी। अर्लीएस्ट कब बंधेगी, जैसे पूर्व कोटि की आयु लेकर कोई यहाँ जन्मा है, यहाँ यानी कर्मभूमि का मनुष्य हुआ है, तो 2/3 बीत गई, 1/3 बाकी है, उसको कहेंगे पूर्व कोटि का त्रिभाग बाकी है। तब किसी ने आयु का बंध किया तो आबादा कितनी कहलाएगी, वो पूर्व कोटि का त्रिभाग। यही कह रहे यहाँ पर, पूर्व कोटि वर्ष के त्रिभाग अर्थात तीसरे भाग से लेकर ओ संक्षेपाध्या अर्थात जिससे छोटा कोई काल न हो, ऐसे काल तक जितने आबादा काल के विकल्प होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, यानी मैक्सिमम आबादा कितनी हो सकती है, एक पूर्व कोटि का त्रिभाग, उसमें एक समय कम, दो समय कम, कुछ भी हो सकता है ना। एक साल रह गया, इसने 5 मिनट पहले आयु बांधी, इसे 2 मिनट पहले पूरी आयु बांधी, असंक्षेपाध्याय मिनिमम पॉसिबल, इतनी पहले मनन के इतने पूर्व तो आयु बांधेगा ही बांधेगा। ऐसे आयु बांधते बांधते दूसरे समय में मरेगा ऐसा कभी नहीं होगा। आयु बंध पूरा होने के बाद इतना मिनिमम काल तो बिताएगा ही कोई, तो इसको कहेंगे इतनी छोटी वो असंक्षेप बाधा नाम है उसका, ये उतनी तो आबादा रहेगी ही रहेगी। तो कहते वो आबादा काल के इतने विकल्प ने इतने उसके जुदे जुदे छोटी से बड़े तक इतने सारे भेद हो जाए। देव और नारकियों में 6 महीने पहले आयु का बंध हो सकता है, बाद में उसके त्रिभाग त्रिभाग हो गए। बहुभूमि में भी ऐसा ही होता है।
6 महीने पहले आयु बंधेगी,
6 महीने पहले, या फिर वो 6 महीने के त्रिभाग त्रिभाग
विकल्प।
ये समय ज्ञान चंद्रिका में एक जगह 9 महीने लिखा है, एक जगह 6 महीने लिखा है, पर 6 महीने सर्वत्र लेना, देव नारके और बहुभूमि। उनमें देव और नारकियों के आयु की उत्कृष्ट निषेक स्थिति संभव है। क्या कहा, इन्हें उत्कृष्ट देवायु या नरकायु बांधने वाला कब बांध सकता है, वंथर पूर्व कोटि पहले भी बांध सकता है, या असंक्षेपाध्या काल पहले भी बांध सकता है। ये बात आई ना यहाँ पर, यानी असंक्षेपाध्या में बांधने वाला अपर्याप्त का ही बांधता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये किसी ने प्रश्न पूछा था मेरे को, यानी बड़ी देवायु जो 33 सागर की, वो भी एक छोटे अंतर्मुहूर्त पहले मरण के जस्ट पूर्व बांध सकती है। यही असंक्षेपाध्या बहुत छोटा है, यानी 1/3 पूर्व कोटि से लेकर असंक्षेपाध्या खास उसको बताया, यानी वो मिनिमम पॉसिबल वाला अंतर्मुहूर्त है। यानी वो 1/3 पूर्व कोटि से लेकर असंक्षेपाध्या तक के किसी भी आबादा के साथ उत्कृष्ट देवायु बन सकती है, नरकायु बन सकती है। मैक्सिमम आयु तो वही है ना, अन्य भी कोई भी बन सकती है। यानी आबादा का कोई भी भेद हो सकता है, यानी उत्कृष्ट 33 सागर की आयु बन सकती है। अभी उसमें उत्कृष्ट आबादा के साथ तो उसकी उत्कृष्ट आबादा बताएंगे यहाँ पर, परंतु वो किसी के साथ भी बन सकती है पहले मैं ये नक्की करना है। यानी बड़ी आयु है तो बहुत पहले बांधनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आयु कर्म की ही बात चल रही है इसीलिए इस पे, यानी आबादा इज डिस्प्रोपोर्शनेट टू द कितनी आयु बंधी, उससे कब बंधी है उतने उसको आबादा कहेंगे। यानी मरण के कितने पूर्व बंधी है उतना उसका आबादा काल है। विशेषार्थ 1 नंबर देखो, ये असंक्षेपाध्या किसको कहना, उसका 1 नंबर के फुट नोट 167 पेज पर, जहन आउ बंध कालो जहन विसमण काल पुरस्सरो आ संक्षेपाध्या नाम। यानी आयु बंध का काल, काल यानी अंतर्मुहूर्त तक आयु बनती है, वो अंतर्मूर्त का प्रमाण भी छोटा बड़ा हो सकता है। यानी उतने समयों में मिलकर जीव ने आयु कर्म के परमाणु को ग्रहण किया, उसको आयु बंध का काल कहेंगे। हम समझने के लिए इन्हें कहेंगे ना कि किसी ने अभी असंख्यात समयों में तो बनती बनती है, समझाने के लिए कहेंगे किसी ने 1 सेकंड में बांधी, किसी ने 5 सेकंड में बांधी, समझाने के लिए हो, नहीं तो उसको सेकंडों में मत गिनना। तो कहते कि यहाँ क्या लिखा, जहन न हो आओ बंध कालो, यानी आयुष्य बंध का काल भी छोटा लेना, ये छोटा अंतर्मूर्त लेना। जहन न विश्रमण काल पुरस्सरो, यानी उसके बाद आयु बंध के बाद उसका विश्राम काल भी होता है, इमीडिएट मरता नहीं है, यानी आयु बंध का काल भी जघन्य और बाद वाला भी काल मिनिमम, ऐसा जब होता है उसका नाम है असंख्य पद्धा नाम, उसका असंख्य पद्धा ये नाम है उसका। यानी मरण के एक अंतर्मूर्त पहले आयु बांधना चालू की, छोटे से काल में आयु बंध का काल पूरा हुआ, उसके बाद जो विश्रमण काल कहो या विश्राम का काल कहते वो भी मिनिमम पॉसिबल है। उसी का आगे गोमंडकसार कर्मकांड में बताया, न विद्यते अस्मात् अन्य संक्षेपः असंक्षेपः, यानी जिससे और छोटा नहीं हो सकता वो असंक्षेप, उससे और संक्षेप यानी और कम नहीं हो सकता, ये असंक्षेप। सच असौ अद्धा, वो जिसका काल है, च असंक्षेपाद्धा, उसको असंक्षेपाद्धा कहते हैं। आवली असंख्य भाग मात्रत्वात्, देखो उसको भी अंतर्मूर्त कहने, आवली के असंख्यात वे भाग, आवली भी अपने पकड़ में नहीं आते, उसका असंख्यात भाग है, ख्याल में है ना। हाँ नहीं, उसका तो अंतर्मूर्त तो होगा ही, परंतु वो तो उससे ज्यादा ही होगा, ये विश्राम का काल इतना मिनिमम है, आयु बंध के बाद वाला ये काल है वो मिनिमम इतना होगा ही। नहीं नहीं नहीं, विश्राम का काल कम होगा, आयु बंध तो अंतर्मूर्त प्रमाण होता ही होता है, हो सकता है ना, छोटे से बड़े अनेक हो सकते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम आयु बंध का जो काल है वो यथा योग्य होगा। आगे भी लिखा है ना 2 नंबर का, पौवाणम कोड़ी त्रिभागात, यानी पूर्व कोटि त्रिभाग से लेकर असंक्षेप अद्धवोत्ति हवे, असंक्षेप अद्धा काल तक आउ से आबाह, आउ के आयु के आबाधा हो सकती है, न ठिदी परिभाग माउस, यानी तो स्थिति के प्रतिभाग रूप में, यानी स्थिति के प्रपोर्शन रूप में वो आयु के आबाधा नहीं होती। यह विशेषार्थ देखते हैं, देवायु का बंध मनुष्य 3 इंच गति में ही हो सकता है, नरक या देव गति में नहीं, और आगामी आयु का बंध शीघ्र से शीघ्र, भुज्यमान आयु कहने अर्लीएस्ट कब हो सकता है, भुज्यमान जो हम भोग रहे आयु, भुज्यमान आयु के 2/3 भाग यानी 2/3 भाग व्यतीत होने पर तथा अधिक से अधिक मृत्यु के पूर्व होता है, अधिक से अधिक दूर यानी मरण के जस्ट पहले। कर्मभूमि जो मनुष्य 3 इंच की उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व वर्ष की है, कर्मभूमि की बात बताएं, भोग भूमि में तो 6 महीने या 9 महीने की जो बात बताते, अतएव देवायु का बंध भुज्यमान आयु के 1/3 भाग शेष रहने पर हो सकता है, यानी इसको 1/3 कहते हैं, और यही काल देवायु के स्थितिबंध का उत्कृष्ट आबाधा काल होगा। मरते समय ही आयु का बंध होने से असंक्षेप अद्धारूप जघन्य आबाधा काल प्राप्त होता है, मरते समय ने मरने के जस्ट पूर्व, इन दोनों मर्यादाओं के बीच, ये मरते समय ही क्यों लिखा है, इन दोनों मर्यादाओं के बीच देवायु की आबाधा के मध्यम विकल्प संभव है। भोग भूमि प्राणियों के आगामी आयु के केवल 6 मास तथा अन्य मतानुसार 9 मास शेष रहने पर होता है, ये दोनों ही मत आते, मैंने बोला ना समय ज्ञान चंद्रिका में दो जगह दो अलग अलग बातें लिखी है। मानते हैं ना, असंख्यात जीव जाते हैं ऊपर, तो बहुनत्री को ज्योतिषी में इतने जीव जाएंगे एक समय में, असंख्यात मरकर जाएंगे। कहां से जाएंगे? तिर्यंच में से जाएंगे। भोगों में तो नियम से जाते ही जाते हैं। हाँ, वो उत्कृष्ट कर्मभूमि में से भी जाते हैं, वहां पर भी असंख्यात है। स्वयं रमण समुद्र में असंख्यात है। हाँ, और सारे बीच के द्वीप है सारे, जो वो सारे जघन्य भोगभूमि वाले तिर्यंच, क्योंकि वो नियम से देव में जाएंगे। और यहाँ पर भी जो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भोगभूमि में, सारे नियम से देव में जाएंगे, वो नियम है उनका। और बाकी कर्म भूमि के तो जाएंगे ही जाएंगे ना, उसके लिए सम्यक दृष्टि होने की आवश्यकता नहीं। मिथ्या तो अवस्था में तो जाते ही है। हमने ये भी देखा था, जितने वो नरक में जाने वालों से भी देव में जाने वाले असंख्यात गुना, इन्हें उतने बार असंख्यात गुना हमने देखा था। हाँ, अब हम यहाँ देख रहे थे, यह है 5-7 मिनट, 23 नंबर का सूत्र, पूर्व कोड़ी तिभागो आबाधा। ये उत्कृष्ट आबाधा बता रहे, उत्कृष्ट स्थितिबंध बताया और उसकी उत्कृष्ट आबाधा। ये जरूरी नहीं कि ये उत्कृष्ट ही आबाधा होती है, ये पहले बता चुके हैं। नारकायु और देवायु का उत्कृष्ट आबाधा काल पूर्व कोटि वर्ष का त्रिभाग है, यानी तीसरा भाग है। पूर्व कोटि के त्रिभाग से लेकर असंक्षेपाधा पर्यंत आबाधा का प्रमाण होता है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। बताया ना उन्होंने, ये मैक्सिमम आबाधा बताई, परंतु मैक्सिमम आबाधा के साथ ही मैक्सिमम बंद होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नक्की करना है। असंक्षेपाधा काल में भी आयु का बंध करने वाले भी इतनी बड़ी आयु देवायु बांध सकते हैं। शंका, यदि पूर्व कोटि वर्ष के त्रिभाग से लेकर असंक्षेपाधा काल तक संभव सब आबाधा के भेद आयु कर्म की सर्व निषेक स्थितियों में होते हैं, तो पूर्व कोटि वर्ष के तिभाग प्रमाण ही यह उत्कृष्ट आबाधा काल उत्कृष्ट निषेक स्थिति में किस लिए कहते हैं? इन्हें उसकी करने की जरूरी क्या थी यहाँ पर? वो प्रोपोर्शनेट नहीं होता, कुछ भी आबाधा हो सकती है, तो इसलिए यहाँ सूत्र में क्यों बताए? ये शंकाकार की शंका है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट आबाधा काल के बिना उत्कृष्ट निषेक संबंधी उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्राप्त नहीं होती। देखो, हम यहाँ निषेक स्थिति और कर्म स्थिति ऐसे दो भेद किए। जैसे मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति बंधी 70 कोड़ाकोड़ी सांगे, उसका उदय काल कब शुरू होगा? 7000 वर्ष के बाद। तो बंधने के समय से लेकर उसकी कर्म स्थिति गिनाई थी, उसमें निषेक स्थिति कितनी बनी? 70 कोड़ाकोड़ी सागर माइनस 7000 वर्ष। अब आयु में निषेक स्थिति उत्कृष्ट कितनी? 33 सागर। और इसमें अगर उत्कृष्ट आबाधा मिलाएंगे तो उसको कर्म स्थिति कहेंगे, क्योंकि आबाधा प्लस वो निषेक स्थिति इज इक्वल टू, हाँ, वो उसमें जोड़ देना, ये कहने के लिए बताए। फिर से पढ़ते इसको, तो कहते कि उत्कृष्ट आबाधा काल के बिना उत्कृष्ट निषेक स्थिति संबंधी उत्कृष्ट कर्म स्थिति प्राप्त नहीं होती। यानी उत्कृष्ट आबाधा प्लस उत्कृष्ट निषेक स्थिति मिलाकर उसको कथन करना था उनको, ये उनका प्रयोजन है। यह बात बतलाने के लिए उत्कृष्ट आबाधा काल कहा गया है, अर्थात यद्यपि आयु कर्म के संबंध में उत्कृष्ट निषेक स्थिति और उत्कृष्ट आबाधा काल का अविनाभावी संबंध नहीं है, जैसा कि अन्य कर्मों का है। अन्य कर्मों में उत्कृष्ट स्थिति के साथ ही उत्कृष्ट आबाधा होगी, आयु कर्म में ऐसा कुछ संबंध है ही नहीं है। तथापि आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तो तभी जानी जा सकती है जब उत्कृष्ट आबाधा के साथ उत्कृष्ट निषेक स्थिति का योग किया जाएगा। इसलिए इन दोनों उत्कृष्ट स्थितियों का मेल करना आवश्यक है, ये यहाँ बताया है। और यही बात हमने महाबंध में देखी थी, आपको याद होगा। तो आयु का उत्कृष्ट बंध, उसका अंतर कितना होगा? देवायु का उत्कृष्ट बंध का अंतर जगन्य और उत्कृष्ट, एक बार देवायु बांधी उत्कृष्ट आबादा के साथ, और फिर दोबारा बांधनी चाहिए। दो बार बांधनी चाहिए और उत्कृष्ट बांधनी चाहिए। यानी वन थर्ड पूर्व कोटि पहले 33 सागर की देवायु बांधी। दो बार बांधनी चाहिए उसका मिनिमम। अच्छा, उसका मिनिमम काल और मैक्सिमम काल आपको देखना है। अंतर्मूर्त कैसे, उसके आबादा उत्कृष्ट नहीं होगी। देखो देखो, ऐसा आया था उसमें वन थर्ड पूर्व कोटि बांधी उसने, है ना, तो फिर उसका उसने घातायुष्क किया। नहीं, आयु के अंत में बांधेगा उसके उत्कृष्ट आबादा नहीं कहलाएगी। एक आयु एक बार ही बांधेगा तभी उत्कृष्ट आबादा। उत्कृष्ट अंतर कब चाहिए, उत्कृष्ट आबादा सहित, उत्कृष्ट आबादा लेना है उसकी। फिर 33 सागर की नहीं बांधेगा वो, 33 सागर की भोगेगा तो वो चला जाएगा मोक्ष। फिर देवायु कब बांधेगा, अरे हम देवायु की पूछे हमने, नहीं ना चलेगा उसको, उत्कृष्ट देवायु नहीं कहेंगे। कल देख के आना, कल देख के आना, एक समय नहीं करेगा वो तो उत्कृष्ट नहीं कहलाएगा। तैतीस सागर की बांधनी चाहिए। आप पढ़ना कल, उसके फिर घातायुष्क किया था फिर बांधी थी, ऐसा कुछ कुछ अभी अभी बाद में देखेंगे। और फिर 10,000 वर्ष में फिर बाद में कुछ उसके भाव भी बाकी रहेंगे ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये इतना वो तो पूरे उतने समय लेने चाहिए, केवल वो आयु देवायु जो हम बांधते हैं कहते हैं उसको। हाँ, निषेक स्थिति ये पढ़ा था हमने कहीं कहीं, उसमें आया था। चल अभी यहाँ ये हमने पढ़ा ना, 24 सूत्र कल पढ़ेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनं सदा देत होडू।